अमुनाति रावण चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रज भूमि वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, द्वारका परिधाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की, मायापुर नवदीप धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी देवी की, कलयुग पवन हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध का 11वां अध्याय और उसका श्लोक नंबर 36। तो यह अध्याय का शीर्षक है भगवान का द्वारका में प्रवेश। तो इसमें कुल मिलाकर 39 श्लोक हैं, तो उसमें से एक श्लोक का गान हम करेंगे और अध्याय में से बाकी कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक आप मेरे पीछे दोहराइए। पीछे दिख रहा है आखिरी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उद्दाम भाव पिशुन अमल वल्गु हास व्रीड अवलोक निहतो मदनो अपि यासाम सम्मुह्य चापम अजहात प्रमदोत्तमाः। आत्ता यस्य इन्द्रियं विमथितुं कुहकैर् न शीकुः उद्दामभावपिशुना मलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोपियासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शीकुः उद्दामभावपिशुना मलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोपियासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शीकुः उद्दामभावपिशुना मलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोपियासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शीकुः कोई गाना चाहेंगे उद्याम व्रीडावलोक निहतो मदनोपियासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शीकुः व्रीडावलोकनिहतो मदनोपियासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शीकुः माताजी में से कोई उद्दामभावपिशुना मलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोपियासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शीकुः शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की उद्दाम अत्यंत गंभीर भाव भाव पिशुना उत्तेजक अमल निष्कलंक वल्गुहास सुंदर मुस्कान व्रीड आँखों की कोर अवलोक देखना या चितवन निहतः जीता गया मदनः कामदेव ब्रैकेट में या अमदन मदन या अमदन ऐसे दोनों अर्थ है तो आप बाद में देखेंगे उसका अर्थ है। अपि यासाम सम्मुह्य, आई थिंक यहाँ पर अनुवाद नहीं दिया हिंदी में, जरा हाँ इधर दिया है, अपि भी यासाम जिसका सम्मुह्य से विजित होकर चापम धनुष अजहात त्याग दिया, प्रमाद मादक बनाने वाली स्त्री उत्तमहा उच्च कोटि की, ता वे सब यस्य जिसकी इंद्रियम इंद्रियों को विमथितुम विचलित करने के लिए कुहक है हाव भाव द्वारा, न कभी नहीं श्री कुहु समर्थ। अनुवाद, यद्यपि रानियों की मृदु मुस्काने तथा बाकी चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे, यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी, ये अमदन इसके लिए है, मदन यानी कि कामदेव और अमदन यानी कि मदन से जो पराभूत नहीं हुए शिवजी, शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। उसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम एक ही परिच्छेद पढ़ेंगे। तात्पर्य, मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है, और सारा सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की सारी व्यवस्था स्त्री संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नैमिषारण्य के मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिवजी को भी डिगा सकते हैं, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासनाओं को उद्दीपित करना। तो आगे बड़ा तात्पर्य हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और उसका पूरे अध्याय से क्या संबंध है वो देखेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साघ्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदि श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರಿಣೆ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮಿನೇ ಗೌರ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧೂಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ತೊ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮೈ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಿ ಯಾಚನಾ ಕರ್ತಾ ಹೂ ತಾಕಿ ಯೇ ಜೋ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇನೆ ಕಿ ಸೇವಾ ಹೈ ವೋ ಮೈ ಅಚ್ಛೆ ಢಂಗ ಸೆ ಕರ್ ಸಕೂ. ತೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೇ ಜೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೈ ತೊ ಯೇ ಮೈನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಿಯಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಭಕ್ತಿಮಯ ಜೀವನ ಮೇ ಹಮ್ ರೋಜ್ ಕಿ ಸಾಧನಾ ಕರ್ತೆ ಯಾ ಹಫ್ತೆ ಮೇ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸತ್ಸಂಗ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ ತೊ ಇಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹಮಕೊ ಅಚ್ಛಾ ಆವಾಜ್ ಯಾ ಅಚ್ಛಿ ಧ್ವನಿ ಸುನ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ ಯಾನಿ ಕಿ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ನಹೀ ತೊ ಬಾಹರ್ ಕಾಮ ಪರ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಯಾ ಜಹಾಂ ಭಿ ವ್ಯವಸಾಯ ವಗೈರಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೊ ಉಧರ್ ಇತನೆ ಅಲಗ ಅಲಗ ವೆರೈಟಿ ಕೆ ಆವಾಜ್ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಮನ್ ಕೊ ಬಹುತ್ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಬಹುತ್ ವಿಚಲಿತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೊ ಕೇವಲ ಮಂದಿರ್ ಹಿ ಐಸಿ ಜಗಹ ಹೈ ಕಿ ಜಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ ಯೇ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಸುನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಯಹಾಂ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮಾರೆ ಸಬ್ಸೆ ಜೋ ಹಿತೈಷಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತೊ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಸಭಿ ಜೀವಾತ್ಮಾವೋ ಕೆ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಹೈ ಹಿತೈಷಿ ಹೈ ತೊ ಐಸಾ ಹೋತೆ ಹುಯೆ ಭಿ ಉನ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಉನ್ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಹಮಕೋ ಇತನಾ ಅಚ್ಛೆ ಢಂಗ ಸೆ ಹಮ ಕರ್ ನಹೀ ಪಾತೆ ಕುಛ್ ನಾ ಕುಛ್ ಗಲತ್ ಸಮಝಾವಟ್ ಹಮಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇ ಯಾ ಆಂತರಿಕ ಸ್ತರ ಪರ್ ಚಲ್ತಿ ಹೈ ತೊ ಉಸ್ಕೋ ಕಭಿ ಖುಲೆಆಮ್ ಪ್ರಶ್ನ ಕರ್ನಾ ಯೇ ಭಿ ಕುಛ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಸಂಕೋಚ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಮೇರಾ ಜೋ ಡೌಟ್ ಹೈ ಯಾ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ಅಗರ್ ಯೇ ಪ್ರಕಟ್ ಹೋ ಜಾಯೆ ತೊ ಮೇರೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಭಕ್ತ ಕ್ಯಾ ಸೋಚೆಂಗೆ ಐಸಾ ಜರಾ ಖುದ್ ಕಾ ಭಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಇಮೇಜ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಸೋಚ್ತೆ ಹೈ ತೊ ಯೇ ಸಬ್ಸೆ ಸುಹೃದ್ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜೋ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಪ್ನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮೇ ಪಢಾ ಹೋಗಾ ಯಾ ಸುನಾ ಅಭಿ ಮನೆ ಜೋ ಪಢಾ ಕಿ ಏಕ ತರಫ ಭಗವಾನ್ ಗೀತಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಜಗಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮನ್ ಕರೋ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇ ರಖೋ ಸಂಯಮಿತ ರಖೋ ಐಸಾ ಬೋಲ್ತೆ ಔರ್ ದೂಸರಿ ತರಫ ಸ್ವಯಂ ಇತನೆ ರಾನಿಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಿವಾಹ ಕಿಯಾ ತೊ ಐಸಾ ವಿರೋಧಾಭಾಸ್ ಉನ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮೇ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇ ಊಪರ್ ಊಪರ್ ಸೋಚನೆ ವಾಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಸಾ ಹೀ ಸೋಚೇಗಾ ಕಿ ಹಮಕೋ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬೋಲ್ತೀ ಔರ್ ಖುದ್ ನಹೀ ಹೈ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊ ಉಸ್ಕಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಬೋಲ್ತೆ ಕಿ ಯೇ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ದೇತೆ ಹೈ ತೊ ಅನ್ಯ ಭಿ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥ ಹೈ ತೊ ಮಂದಿರ ಮೇ ಆಕರ್ ಜೋ ಭಿ ಹಮ ಉಪದೇಶ ನಿರ್ದೇಶ ಆದೇಶ ಜೋ ಭಿ ಸುನ್ತೆ ಉಸ್ಕಾ ಜೋ ಸಾರ ಹೈ ವೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ ತೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೇ ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದ್ವಾರಾ ಲಿಖಿತ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ನಾಮಕ ಜೋ ಗ್ರಂಥ ಹೈ ತೊ ಉಸ್ಮೇ ಕೇವಲ 11 ಶ್ಲೋಕ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ 8 ನಂಬರ್ ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಪೂರೆ ಉಪದೇಶೋ ಕಾ ಸಾರ ಕ್ಯಾ ಹೈ ವೋ ಬತಾತೆ ಹೈ ತನ್ನಾಮ ರೂಪ ಚರಿತಾದಿ ಸುಕೀರ್ತನಾನು ಸ್ಮೃತ್ಯೋ ಕ್ರಮೇಣ ರಸನಾಮನಸಿ ನಿಯೋಜ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ ವ್ರಜೇ ತದನುರಾಗಿ ಜನಾನುಗಾಮಿ ಕಾಲಂ ನಯೇದಖಿಲಮಿತಿ ಉಪದೇಶ ಸಾರಂ ತೊ ಸಭಿ ಉಪದೇಶ ಕಾ ಸಾರ ಕ್ಯಾ ಹೈ ತನ್ ನಾಮ ರೂಪ ಚರಿತಾದಿ ತನ್ ಯಾನಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ರೂಪ ಚರಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಕೀರ್ತನಾನೋ कीर्तन यानी कि जो एक्चुअली कीर्तिमान है, जिनकी वास्तव में कीर्ति है, उस कीर्ति का गुणगान करना ही कीर्तन है, वो कीर्ति के बारे में दूसरों को बताना। तो इधर सुकीर्तनानु, बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन करना। तो ये हम जो कर रहे हैं वो ये स्टेज है। तो उसके बाद क्या होगा, स्मृत्यों क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। तो जिह्वा को सुकीर्तनानु में लगाना और बाद में स्मृत्यो, हमारा मन, स्मृत्यों क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। तो जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में बहुत बोलता है, उसी चीज के बारे में मन में बहुत उसके विचार स्ट्रांग रहते हैं, तीव्र रहते हैं। तो इसलिए ये हमें आदेश दिया है यहां पर कि स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, और उसके बाद तिष्ठन व्रजे। तिष्ठन यानी कि वास करते हुए, कहां पर, व्रजे या व्रज का भाव जहां पर दिखता है ऐसी जगह, तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुरागी। तो व्रज का भाव जहां पर है ऐसी जगह रहो, और वहां पर कृष्ण के प्रति अनुराग, बहुत आसक्ति जिसकी है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, और ऐसे व्यक्ति का अनुगमन करो। और ऐसे ही करते हुए कालम नयेत, काल को बिताओ। इति अखिल उपदेश सारम, यही सभी उपदेशों का सार है। तो ये जो श्लोक है उसका दूसरा लाइन या पहला लाइन, सुकीर्तनानो। तो भगवान के चरित्र का अच्छे ढंग से कीर्तन कैसे करें हम, या कुंती महारानी की भी एक प्रार्थना है जिसमें वो कुंती महारानी कहती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्भुजम्। तो ये पांच चीजें, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति, ऐसा बहुवचन में है। तो ये जनाः शृण्वन्ति, जो जन सुनते हैं, गाते हैं या गुनगुनाते हैं, स्मरण करते हैं, और दूसरे ये चार कार्य जब करते तो खुद आनंदित हो जाते, दूसरे भी भगवान के बारे में सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो ये देखकर वो खुद भी आनंदित हो जाते हैं। तो ते एव, ऐसे ही लोग, अचिरेण पश्यन्ति, बहुत कम समय में देखेंगे, जल्दी ही देखेंगे। तो क्या देखेंगे, तव पदाम्भुजं पश्यन्ति, आपके चरण कमल देखेंगे, और भव प्रवाह उपरम, और ये जो भव प्रवाह है, काल का प्रभाव, वो शांत हो जाएगा, या जन्म मृत्यु का उनका जो साइकिल है वो शांत बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि भगवान का एक लीला इस अध्याय में आया है कि भगवान ने हस्तिनापुर से निकले और फिर वो द्वारका में अभी प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान 11 साल तक वृंदावन में रहे और फिर बाद में मथुरा में करीबन 17-18 साल रहे, और उसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी का निर्माण किया और फिर उधर 80-90 ईयर्स उधर रहे, और उसके बीच में अपने भक्तों के मिलने के लिए द्वारका से, जहाँ पांडव रहते थे वन में, उनको मिलने के लिए जाते थे, या विशेष करके जब युद्ध होने के पहले उनको मदद करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, या जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लेते तो उन तब मार्गदर्शन करने के लिए, तो बहुत बार अपना द्वारका नगरी छोड़कर भगवान बाहर आए। और विशेष करके ये प्रसंग में अभी युद्ध होने के पहले भगवान कई महीने हस्तिनापुर आए, और युद्ध होने के बाद भी कई महीने हस्तिनापुर में रहे। तो युद्ध दिसंबर में चालू हुआ, 7 या जब एकादशी है दिसंबर की, गीता जयंती के अवसर पर, और भीष्म पितामह को दर्शन दे कब दिया, जनवरी में दिया, 1.5-2 महीना के बाद दिया। तो उसके बाद भी कुछ समय युधिष्ठिर महाराज के रिक्वेस्ट के अनुसार फिर कुछ दिन रहे, और फिर वहां से निकलकर भगवान अभी द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब भगवान नजदीक पहुंचे द्वारका के, तब क्या क्या हुआ उसका विश्लेषण थोड़ा सा पढ़ते। सूत उवाच आनर्तान स उपव्रज श्रद्धान जनपदान स्वकान दधमोदरवरम तेषाम विषादम शमयन इव। तो सह यानी कि कृष्ण, सह स्वकान श्रद्धान जनपदान या आनर्तान, एक ही जगह के लिए चार चार शब्द है, स्वयं के बहुत समृद्धशाली आनर्त नाम के जनपद में या प्रदेश में उपव्रज, वहां पर वो नजदीक पहुंचे, तो सीमा पर पहुंचे मान लीजिए। तो वहां पहुंचने के बाद क्या उन्होंने किया, तो उन्होंने दधमौ ये क्रिया की, उन्होंने बजाया, क्या बजाया, दर वरम या वरम यानी कि श्रेष्ठ, दर यानी कि शंख, तो अपने श्रेष्ठ शंख पांचजन्य नामक शंख को बजाया। तो ये बजाने से क्या हुआ, तेषाम यानी कि जो द्वारका में रहने वाले लोग हैं, तेषाम विषादम शमयन इव, उनका विषाद जो है, दुख जो है, उसको शांत करते हुए मानो उन्होंने ये शंख बजाया। तो ये शंख भी कैसे विशेष है, तो उसका भी वर्णन अगले श्लोक में आता है। स उच्च काशे धवलोदरोदरो अप्युरु क्रमस्याधर शोण शोणिमा दाद्भायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। तो यहां पर सह यानी कि वो शंख, तो वो शंख कैसे था, धवलोदर, जिसका उदर, धवल प्लस उदर, जिसका उदर धवला, धवल सफेद रंग था, का था, तो वो दर भी जो शंख है वो भी, दरह अपि उरुक्रमस्य अधर, तो भगवान उरुक्रम की अधर यानी कि ओठ कैसे थे वो, अधर शोन, तो लाल रंग के उनकी ओठ, तो उससे लाल हुआ, अधर शोन शोनिमा, और उसको कैसे किया था, कर कंज संपुटे, भगवान के उंगलियों में उन्होंने वो शंख को पकड़ा था। तो जब उसको बजाया गया दाद्भायमान, तो वो भी कैसे उच्च काशे, बहुत सुशोभित हो रहा था, उसकी भी शोभा कैसे बढ़ रही थी, और उसके लिए उदाहरण क्या दिया है, यथा अब्ज खंडे, अप यानी कि पानी, और वहां में या पानी में जन्मने वाला, तो प का उधर ब हो गया है, यथा अब्ज खंडे, तो कमलों के झुंड में अब्ज खंडे, यथा जिस प्रकार कलहंस या राजहंस उत्स्वन, राजहंस जिसके आजू बाजू सब लाल रंग के कमल है, और ये सफेद रंग का हंस जो है वो उच्च स्वर से जैसे गायन करता है, तो ये शंख की भी शोभा बढ़ रही थी, क्योंकि भगवान के ओठ और भगवान के तलवे ये लाल रंग के, उसके बीच में ये शंख है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में अगर है, कांटेक्ट में अगर है, तभी हमारी भी शोभा बढ़ सकती है, नहीं तो ये इंडिपेंडेंटली शंख को कुछ इतनी कीमत नहीं है, लेकिन जब ये शंख भगवान के हाथ में या भगवान के अधर को स्पर्श करता है, तब उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि अन्य लोगों के विषाद भी वो नष्ट कर सकता है। तो आपने एक सेमिनार भी सुना होगा, पेंसिल पैराबल, पेंसिल को वैल्यू कब तक है, जब तक वो किसी के दूसरे के हाथ में है तब तक, या जब तक वो कंपास में है तब तक। वो पेंसिल से कुछ अच्छी चीज लिखी जा सकती है, अच्छा कुछ नक्शी डिजाइन कुछ बनाया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली वो पेंसिल को कुछ वैल्यू नहीं है। तो यहां पर भी जब हम भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में है, तभी हम कुछ विशेष बन जाते हैं। तो ये शंख बजाने के बाद भगवान ने बाकी ये सभी द्वारका के निवासियों को मानो एक सिग्नल दे दिया। तम उपश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृ दर्शन लालसहा। तो ये शंख की आवाज निनदम, तो तम निनदम उपश्रुत्य, वो आवाज को सुनकर, और वो आवाज कैसी है उसका विशेषण क्या है, जगत भय भयावहम। तो ये संसार का, जगत का भय को भी भयभीत करने वाला ये शंख का ध्वनि उपश्रुत्य सुनकर सर्वाहा प्रजा सभी द्वारका के निवासी या प्रजा भर्तृ दर्शन लालसहा अपने भर्ता भगवान कृष्ण का दर्शन करने की लालसा से प्रत्युद्ययुः वो भी नगर से बाहर आए और सीमा की तरफ बढ़ने लगे। तो आगे वर्णन आता है कि भगवान को मिलने के लिए ये सब जाते हैं तो क्या क्या चीजें लेके जाती है। तो तत्रोपनीत बलयो रवेर दीपम इवादृताः आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभीन नित्यदा। तो यहां पर बलयो यानी कि उपहार, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस उन्होंने उपनीत साथ में लेकर आए वो, और किसको अर्पण किए, आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभीन नित्यदा, हमेशा स्वयं के लाभ से खुद में ही रममान रहने वाले, पूर्ण कामम यानी कि उनकी कोई अपनी इच्छा या कुछ पाने की इच्छा, जिनकी मनोरथ परिपूर्ण हुए हैं, पूर्ण कामम ऐसे भगवान को अर्पण करने के लिए उन्होंने अलग उपहार लाए। मानो रवेर दीपम इवादृतः, रवे यानी कि सूर्य, तो सूर्य को मानो दीप अर्पण करने के समान उन्होंने ये उपहार लेके आए। तो ये दीप में जो भी ये कॉटन है, ऑयल है, या जो लैंप है मेटल का, तो ये एक्चुअली सूर्य की कृपा से ही बना हुआ है सब। जो ऑयल अलग अलग, तिल का ऑयल या अलग अलग जो सीड्स हैं या मूंगफली में रहता है ऑयल, ये सूर्य की कृपा से ही वो बीजों में तेल आया है। और ये जो कपास जो है कॉटन, ये भी सूर्य प्रकाश अगर नहीं हो तो वो कपास का पेड़ बढ़ नहीं सकता। तो सभी ये सूर्य की कृपा से ही आया है। लेकिन अभी ये छोटा सा लैंप सूर्य को आदर दिखाने के लिए व्यक्ति जैसे अर्पण करता है, तो उसी प्रकार से ये सभी जो उपहार लाए वो ये दीपक के समान है जो कि सूर्य को अर्पण किया जाता है। तो भगवान की तुलना यहां पर सूर्य से की गई है। तो बहुत हर्षित होकर उन्होंने कुछ शब्द कहे, तो हर्ष गदगद या गिरा प्रोच्युः, बहुत हर्षित होकर उन्होंने कुछ शब्द बोले। और वो कैसे थे, एक बालक बहुत हर्षित होकर, बहुत आनंदित होकर कैसे पिता से तोतली बोली में बोलता है, तो उसी प्रकार ये द्वारका के निवासियों ने भगवान की स्तुति की। तो क्या क्या स्तुति की, तो उसके एक दो श्लोक, नताः स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेन्द्र वंदितम परायणम क्षेमम इहे क्षताम परम नयत्र कालह प्रभवेत परह प्रभु। तो वयम नताः स्मः, हम आपके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। तो सदा अंघ्रि पंकजम, तो आपके चरण कमलों में हे नाथ हम सदा नमन करते हैं। और आपके चरण कमल कैसे हैं, विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, विरिंच यानी कि ब्रह्मा जी, और वैरिंच यानी कि कुछ जगह पर चार जो कुमार हैं उनका नाम लिया है। तो ये वैरिंच सुरेंद्र, इंद्र या देवताओं के प्रमुख इंद्र, सुरेंद्र वंदितम। और तीसरा विशेषण क्या है, इहे छताम क्षेमम परम, तो इधर ही इस जगत में भी परमम क्षेमम इहे छताम, सबसे हाईएस्ट कल्याण चाहने वाले, तो ऐसे लोगों के द्वारा आपका ये चरण कमल वंदित है, तो उसको हम प्रणाम करते हैं। और आपको प्रणाम करने से क्या होगा, परह प्रभुः, प्रभुः कालः, जो परम शक्तिशाली काल है तो वह वो काल न प्रभावित, वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये द्वारका के निवासियों की प्रार्थना सुनने के बाद फिर भगवान नगरी में प्रवेश करते हैं। तो कुछ श्लोक मैं नहीं ले रहा हूं, नहीं तो वो हमारे समय के अनुसार जितने श्लोक कवर हो सकते उतने हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जब भगवान ने प्रवेश किया तो उनको रिसीव करने के लिए उनके जो नजदीक की जो पार्षद हैं वो सब आ गए। तो वो कौन कौन थे उनके नाम भी दिए हैं। तो भगवान के पुत्र जो विशेष करके प्रद्युम्न चारुदेशन सांब अक्रूर या जाम्बवती सुत सांब, तो ये प्रहर्ष वेगो छशित शयान आसन भोजनहा। तो बहुत हर्ष होने के कारण, प्रहर्ष वेगोत बहुत हर्षित होने के कारण वेग से वो मान लो दौड़ रहे थे। शशित यानी कि वो तेजी से दौड़ रहे थे और क्या करते हुए, शशित यानी कि लांघते हुए, उसको क्रॉस करते हुए। तो शयन आसन और भोजन, तो एक जगह ऐसा विश्लेषण दिया है कि शयन यानी कि ये तमोगुण का प्रतीक है, आसन ये सत्वगुण का प्रतीक है, या और भोजन यानी कि रजोगुण, ये तीनों गुणों को त्यागते हुए बहुत हर्ष के साथ वो भगवान को रिसीव करने के लिए आगे दौड़े। तो जब भगवान आगे प्रवेश करते हैं तो उनका सुंदर वर्णन, उनकी जो सुंदरता है उसके बारे में वर्णन आता है कि वो श्लोक पहले एक बार हम देखते हैं। तो थोड़ा सा जब प्रवेश करने के बाद है तो उसके पहले भगवान ने प्रवेश करने के बाद अलग अलग लोगों के साथ भगवान ने कैसे व्यवहार किया, तो ये तीन स्टेजेस में, तो उनका सामान्य जो प्रजा थी उनके साथ व्यवहार, अपने माताओं के साथ व्यवहार और फिर रानियों के साथ व्यवहार, ऐसे तीन स्टेजेस है। तो इसमें पहला स्टेज, भगवांस्तत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विध्युपसंगम्य सर्वेषां मानम आदधे। तो वहां नगर में या द्वारका में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बंधु नाम, पौरा नाम और अनुवर्ती नाम, तो सर्वेशाम सभी लोगों को जो बांधव थे, द्वारका के निवासी थे, और जो अनुवर्ती नाम उनकी स्तुति वगैरह करने वाले जो उनके फॉलोअर्स थे, तो उन सबको यथा विधि, यथा योग्य, यथोचित मानम आदधे, तो सबसे मान प्राप्त करने के लिए ऐसे ही भगवान है, सभी लोगों से मान स्वीकारने की अवस्था उनकी है, लेकिन यहां पर भगवान दूसरों को मान दे रहे हैं। तो गीता में 13वें अध्याय में भगवान ज्ञान की व्याख्या बताते वक्त पहला शब्द बोलते हैं कि अमानित्वम, तो मान प्राप्त करने की इच्छा न रखना, अमानित्वम। तो जो बात खुद बोलते हैं या हमें उपदेश देते हैं तो वो उन्होंने यहां पर खुद फॉलो भी की है, सब मान स्वीकारने की उनकी स्थिति है लेकिन यहां पर वो मान दे रहे हैं। तो किस प्रकार से मान उन्होंने दिया, यथा विधि अलग अलग लोगों को, तो उसका भी वर्णन है, प्रभाभिवादन आश्लेष करस्पर्श स्मृति क्षण ही आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर विभुः। तो विभुः भगवान ने अलग अलग प्रकार से आदर दिया। तो पहला प्रकार क्या है, प्रौफव, प्रौफव यानी कि उन्होंने नमन किया, और फिर अभिवादन, तो उन्होंने कुछ ग्रीटिंग्स के शब्द बोले, शब्दों से अभिवादन किया, और आश्लेष इसे आश्लिष्ट वा पादरताम पिनष्ठुमान, कुछ लोगों को उन्होंने आलिंगन किया, और फिर कर स्पर्श, केवल हाथ मिलाना या हाथ से स्पर्श किया। और कुछ लोगों को स्मित ईक्षण ही, केवल अपने आंखों के द्वारा उनकी तरफ देखकर उनका मान सम्मान किया। और आगे वर्ड आ रहा है कि च आश आ और श्वपाकेभ्य, यहां तक कि जो श्वपाक तो कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति का भी, तो जैसे आ ब्रह्म भुवना लोक, वहां पर आ श्वपाकेभ्य अपि, तो उसको भी आश्वास्य, उसको भी आशीर्वाद दिया। तो वरैश्च अभिमतेर विभु, तो अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद देकर ये कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति है उसको भी सम्मान दिया, किसी को निग्लेक्ट नहीं किया। लेकिन आजकल ऐसे व्यक्ति जो जरा समाज में कुछ प्रमुख स्थान रहता है, वो जब किसी ऐसे पब्लिक असेंबली में जाते हैं तो केवल सिलेक्टेड लोगों की तरफ देखेंगे, उनको जरा एक्नॉलेज करेंगे और फिर अपना जो मेन एजेंडा है किसको मिलना है उसके उसके तरफ आगे बढ़ेंगे जल्दी। लेकिन भगवान ने अभी 1-1.5 साल बाहर होंगे वो द्वारका से, लेकिन आने के बाद सभी को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये उनकी विशेषता है। तो एक तरफ वो मान या कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ आशीर्वाद प्राप्त भी कर रहे हैं। स्वयं च गुरु भीर विप्रय ही सदा रहे स्वस्थवीर अपि आशीर्भिर युज्यमानो अन्यैर वंदिभिश्चा आविशत्पुरम। तो उन्होंने गुरुओं द्वारा, गुरु भी विप्रय ही सदा रहे ही, ऐसे ब्राह्मण की जो पत्नियों के साथ वहां पर आए थे, और स्थविर यानी कि वृद्ध व्यक्ति जो अभी उनकी जवानी में उन्होंने बहुत सारा विशेष कार्य किया लेकिन अभी बुढ़ापे के कारण भी इतना हिल नहीं पा रहे, स्थविर अभी, तो उनको भी या उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आशीर्भिर युज्यमान, और अन्यों से भी आशीर्वाद प्राप्त कर आविशत्पुरम, वो अपने द्वारका नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। तो जब प्रवेश हो गया उनका और आगे बढ़ रहे थे तो उनकी जो सुंदरता थी वो कैसी थी उसका विश्लेषण एक श्लोक में आता है। नित्यम निरीक्षमाणानाम यद्यपि द्वारकौकसाम न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगम अच्युतम। तो हालांकि ये द्वारका के निवासी द्वारका ओकसाम नित्यम निरीक्षमाना नाम, वो हमेशा ही भगवान का दर्शन करते थे लेकिन न वितृप्यन्ति, उनको तृप्ति महसूस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि श्रियः धामांगम अच्युतम, तो जिनके शरीर पर श्री यानी कि लक्ष्मी जी वास करती है ऐसे अच्युतम का जो रूप है वो देखने में कभी भी तृप्ति द्वारका के निवासी महसूस नहीं करते थे। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला ये बार बार सुनने के बाद भी अगर हमारा भी ऐसा कुछ भाव है तो हम को सोच मानना चाहिए कि प्रगति हो रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये तो भगवान के द्वारका में प्रवेश करने की लीला मैंने पहले भी सुनी है, या भगवान ने जब पांडवों के साथ जाकर कुछ वार्तालाप किया ये भी मैंने सुना है। तो ऐसा विचार आता है कि ये सुना है वो सुना है, तो अभी उसमें कुछ ज्यादा रस बचा नहीं, कुछ आनंद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है हम हमारी साधना में या हमारे भाव में कुछ कमी है, कुछ दोष है। तो जैसे एक ही नाम है लेकिन हर दिन हम 2-2.5 घंटा बोलते हैं, तो जिनका अच्छा जप होता है तो उनको ऐसा लगता है कि 16 ही राउंड क्यों और चाहिए। लेकिन अगर ऐसा भाव नहीं है तो हम सही दिशा में नहीं प्रगति कर रहे हैं। तो एक सीख इनके द्वारका के निवासियों से ये सीख सकते हैं हम। तो एक श्लोक जिसमें भगवान के सर के ऊपर छतरी पकड़ी थी, तो इसके बारे में एक अच्छा श्लोक है, फिर आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सीता तपत्र व्यजनैर उपस्कृतः प्रसून वर्षैर अभिवर्षितः पथि पिशंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचाप वैद्युतैः। तो सीत यानी कि श्वेत, आतपत्र यानी कि अम्र छत्री, तो भगवान के सर के ऊपर ये श्वेत कलर की छत्री पकड़ी थी। और व्यजनैर उपस्कृत, तो ये चामर है दोनों साइड से डुलाया जा रहा था। प्रसून वर्षेर अभिवर्षत पथि, मार्ग में जब भगवान चल रहे थे तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। और पिशंग वासा, तो उनका जो धोती था वो कैसा था, पीले कलर का पिशंग वासा। और उन्होंने वनमालया, तो उन्होंने ये वन के फूलों से बनी हुई माला पहनी थी। तो उनकी सुंदरता कैसे प्रतीत हो रही थी, घनो यथा अर्क उडुप चाप वैद्युतई ही। तो घन यानी कि बादल, मानो ये बादल को पांच चीजें उसको उसके सर आजू बाजू थी, या चार चीजें बोल सकते हैं। अर्क यानी कि सूर्य, और उडुप यानी कि चंद्रमा, चाप यानी कि इंद्रधनुष, और वैद्युत ही यानी कि बिजली। जैसे एक बादल के आजू बाजू ये चार चीजें हैं, ऊपर से सूर्य है और दो अर्ध चंद्रमा, उसका सेमी सर्कुलर जो शेप है ये चंद्र, और इंद्रधनुष और वैद्युत ही बिजली। ये चारों चीजें जनरली एक साथ हम पाते नहीं। जब सूर्य है तो ये बिजली नहीं कड़केगी, या इंद्रधनुष, तो सभी चारों चीजें एक साथ नहीं हम पाते। लेकिन भगवान की सुंदरता को वर्णन करते हुए ये ऐसा असंभव भी संभव हो सकता है, ये भाव है। तो ये द्वारका के निवासियों के साथ ऐसा आदान प्रदान करने के बाद फिर अपने माताओं से मिले। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभि ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर सातों माताओं से, सप्त माताओं उसमें जो देवकी प्रमुख थी, उनको नमस्कार किया। और फिर 16,108 महलों में उन्होंने प्रवेश किया। तो ये वर्णन आता है। और फिर ये 36 नंबर का जो श्लोक है, तो अथा विशत स्वभवनम सर्व कामम अनुत्तमम प्रासादा यत्र पत्नी नाम सहस्त्राणि च षोडश। तो च यानी कि आठ, षोडश सोलह, और सहस्त्राणी 16,108 रानियों के महलों में प्रासाद, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। तो सब पत्नियां भी बहुत प्रसन्न हो गई कि बहुत महीनों के बाद पति वापस आए हैं। तो उन्होंने मन ही मन उत्सव मनाया और अपने पुत्रों को आगे भेजा तो भगवान को रिसीव करने के लिए, भगवान को आलिंगन करने के लिए अपने 10 पुत्रों को आगे भेजा। और फिर आज का जो 36 नंबर का श्लोक है उसके पास आते हैं हम। तो इसमें वर्णन आया कि ये जो रानियों की सुंदरता थी वो इतनी विशेष थी कि मदन जो कामदेव है वो भी निहतः, तो निहतः यानी कि घायल हो गया वो भी। जनरली वो बाकी लोगों को घायल करता है हमेशा, लेकिन इस बार वो खुद घायल हो गया है। तो उद्दाम, ये शुरुआत में लिया था हमने श्लोक, उद्दाम भाव, तो ऐसे भाव जो बहुत गंभीर, और उसका सूचक क्या है, अमल वल्गुहास, निष्कलंक, और उनका बहुत मधुर बोलना और हंसना, और उनका व्रीडा अवलोक, और उनके आंखों के द्वारा देखना। तो ये अगर कोई ये स्त्री विशेष करके द्वारका की स्त्रियां जब करती थी तो कोई भी उससे परास्त या कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता था। तो यहाँ पर मदनह अपि यासाम निहतः, तो इनके ऐसे हाव भाव से मदन भी परास्त हो गया और उसने क्या किया, चापम अजहात। तो आपका जो खुद का जो ये कामदेव का बाण रहता है वो बाण भी उसने त्याग दिया, क्योंकि तो ये ऐसी जो स्त्रियां हैं उन्होंने तहा तहा प्रमदोत्तमहा यस्य इंद्रियम कुहकै ही, तो अपने अलग अलग हाव भावों के द्वारा या मैजिकल फीट्स के द्वारा भगवान की इंद्रियों को इनका जो नियंत्रण है उसका नियंत्रण वो हिला नहीं सकी। तो ये भी एक तरफ ऐसा सामान्य व्यक्ति है तो वो भगवान के बारे में कैसे गलत सोचता है, तो उसका भी आगे एक तम अयम मन्यते लोको यसंगम अपि संगीनम आत्मोपम्येन मनुजम व्यापृण्वानम यतो अबुधा। तो इस लोक के लोग अयम लोक मन्यते ऐसा मानते हैं, हालांकि भगवान असंग संगम है, आसक्त न होने वाले, भगवान जो भी चीजें करते हैं वो ड्यूटी को ज्यादा प्रधानता देते हैं, अपने कर्तव्य को ज्यादा प्रधानता देते हैं और जो अफेक्शन है उसको जरा सेकेंडरी वो द्वितीय स्थान देते हैं। तो जैसे भगवान जब वृंदावन से मथुरा गए तो उधर कंस का वध होने के बाद वापस आ सकते थे वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के निवासियों का जो अफेक्शन है वो सबसे हाईएस्ट है, लेकिन भगवान ने उधर वापस वृंदावन नहीं गए। क्या कारण बताया कि अब ये मथुरा के निवासियों की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है अभी। तो एक उदाहरण है कि जहां पर भगवान ने अपने कर्तव्यों को या उद्देश्य को जिसके लिए इस पृथ्वी पर भगवान आए ये उद्देश्य को भी उन्होंने प्राधान्य दिया। और भगवान राम ने भी सीता माता को वन में भेजने का कारण क्या था कि राजा का कर्तव्य निभाने के लिए अभी आपका अयोध्या में रहना उचित नहीं है। तो भगवान राम के अवतार में भी भगवान ने कर्तव्य को महत्व दिया। तो यहां पर इस लोक जगत के लोग जो है जो अनासक्त व्यक्ति है ऐसे कृष्ण को खुद के जैसा ही आत्मोपम्येन वो मानते हैं कि हमारे जैसा ही ये व्यापृण्वन व्यापार करते हैं। तो उसका कारण क्या है, अबुध, तो वो फुलिश या बुद्धिहीन है। तो वास्तव में ऐसा भाव ये द्वारका की रानियां थी उनका भी था, अगले श्लोक में आएगा वो। तो उसके पहले ये सेकंड लास्ट श्लोक में शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिस् तदाश्रयः। तो इस प्रकार भगवान की जो दिव्यता है, एतद् ईशनम भगवान की जो भगवत्ता है या जो दिव्यता है वो कैसी है, ईशस्य प्रकृतिस्थोपि भगवान प्रकृति में स्थित होकर भी तद्गुणैः न युज्यते, तो ये प्रकृति में होते हुए भी तीन गुणों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो सदा आत्मस्थ ही, तो स्वयं के स्थिति में विराजमान होने के कारण इस प्रकृति में आने के बाद भी इस जगत में आने के बाद भी ये तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। और उसके लिए उदाहरण दिया है, यथा बुद्धिस्तदाश्रयः, तो जिस प्रकार बुद्धि हमेशा आत्मा के अधीन रहती है, एक विश्लेषण दिया गया है कि जिस प्रकार बुद्धि हमेशा आत्मा के अधीन रहती है, बुद्धि या आत्मा बुद्धि से प्रभावित नहीं हो सकता कभी, तो यथा बुद्धि सदाश्रयः, या दूसरा अर्थ जो भी ऐसे भगवान की शरण लेगा तो वो भी ये तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी जो द्वारका की स्त्रियां थी वो भगवान के बारे में क्या सोच रही थी, तम मे निरे अबला मूढ़ स्त्रैनं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुर ईश्वरं मतयो यथा। तो ये जो द्वारका की स्त्रियां थी अबलाह मूढ़ाह वो तम मेनिरे भगवान कृष्ण को मानती थी। क्या मानती थी? रहः एकांत में, ये स्त्रैनम ये एकदम स्त्री लंपट है, और अनुव्रतम ये हमारे ही पीछे पीछे चलने वाले ऐसे स्त्री आसक्त पुरुष है, ऐसा ये अबलाहा मूढ़ाहा मूर्ख स्त्रिया मानती थी कृष्ण के बारे में ऐसा। तो ये किसी के किसके प्रकार है? अप्रमाणविद। तो जो ईश्वरम अप्रमाणविद, तो भगवान का जो शक्ति है प्रमाण या परिमाण या लिमिट क्या है वो जो जानते नहीं है, ऐसे मत यहां ऐसे बुद्धि वाले लोग जिस प्रकार ईश्वर को मानते नहीं उसी प्रकार से ये स्त्रियां भी भगवान की जो स्थिति है वो जानती नहीं थी। तो ये श्लोक का या पूरे इसका जो भी हमने 40-45 मिनट चर्चा की तो उसके द्वारा हमें एक चीज ये एक सीख प्राप्त होती है कि ऊपर ऊपर सोचेंगे तो भगवान के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग खुद के मन में भी बहुत बार रहता है, लेकिन ये जो श्लोक है जिसमें विशेष करके भगवान का सेंस कंट्रोल कैसा है, तो सब अपना मिशन पूरा होने के बाद द्वारका में इतनी समृद्धि थी तो वहां पर ही वो रहना पसंद कर सकते थे, लेकिन जैसे ही मिशन पूरा हुआ तो यदुवंश में भगवान पहले व्यक्ति थे कि वो प्रभास क्षेत्र में गए और उधर एक जरा नामक शिकारी के द्वारा बाण का स्पर्श होने से वो इस पृथ्वी तल से अपने धाम में गए। उनके बाद उनके जो पुत्र है या खुद के पिताजी भी वसुदेव इस पृथ्वी से कब चले गए? कृष्ण जाने के बाद गए। वसुदेव का अंत्येष्टि का जो कार्य है वो अर्जुन ने किया, तो ये उनके क्रिया से भी उनकी जो अनासक्ति है उनका कार्य पूरा हुआ। तो अभी ये समृद्धशाली द्वारका नगरी में मुझे रहना नहीं है या इतने सारे रानियों के सहवास भी मुझे नहीं चाहिए, तो अपने धाम में वापस चले गए। तो जो शिक्षाएं वो हमें गीता में देते हैं उसका खुद उन्होंने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में हमारा जो आसक्ति है या लगाव है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए। नहीं तो इस दुनिया में बहुत बार लोग उपदेश देते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण। बहुत लोगों को उपदेश देते लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति है कि जो जो एक एक पॉइंट आप गीता में लेंगे तो उसका एप्लीकेशन उन्होंने खुद के जीवन में कर दिखाया। तो ऐसे जैसा बोले तैसा चाले तैसी वंदावी पावले, मराठी में एक कहावत है, जैसा बोलता है वैसा वो चलता भी है, ऐसे व्यक्ति के चरणों को बहुत वंदना करनी चाहिए। तो ये सब गुण भगवान में है लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा उनके प्रति आकर्षण इतना तीव्र नहीं है। तो आज जो भी चर्चा की वो इसी उद्देश्य से थी कि हमारा गलत समझावट दूर हो जाए और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।
इस ग्रेस राम निताई प्रभु की।